नारद जी बोले, ब्राह्मण विश्वे प्रजानाथ महाप्राज दग्ध निधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुवेश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिकी की गति का आश्रय नित्य निरंतर कीड़ा किया करते थे। तदांतर महादेव सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान तथा चित्त स्वरूप है, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वे सबको संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौलिक रीति का अनुसरण करके जो जो लीलाएं करते हैं वो सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई। वहां भगवान शंकर का अनारा देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई। बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्या, विधाता अब मुझे शिव और शिवा के भाव तथा आचार से संबंधित रहने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? ये घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर किस प्रकार हुआ, और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उनके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरा मन बड़ी श्रद्धा से है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र में श्रेष्ठ महाप्राज तात नारद सुनो। तो ये भगवान शिव का शिव पुराण का 20वां एपिसोड है, जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं। तो आप सभी का स्वागत है शिव पुराण में, आप बने रहें और शिव पुराण सुने। अगर आप में से कोई है जो उनको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें। तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्र मौलिका के यहाँ चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, ये सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विष्कार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। अच्छा, वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वो दंडकारण्य आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्चारण कर रहे थे, पुकारते पुकारते जहां देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छा गया। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपल दशरथ नंदन भारताप्र श्री राम आनंद रहे थे लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सत्य को बड़ा विस्मय हुआ। वो उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोले। सत्य ने कहा, देवादिदेव सर्वेश परम ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं, सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धरोधर वीर वन में विचरते हुए केश के भागे और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है और उसे देखकर किसी कारण अपना आनंद भी और उठते हैं। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो रहे थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव अपने शयंश को सुने। प्रभु स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करके ये उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याण में परमेश्वरी आदि शक्ति देवी शक्ति के शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव ने इस प्रकार प्रश्न किया तब सती ने वह बात सुनकर लीला विषाद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले, देवी सुनो मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय वो दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाश सूर्यवंश में हुआ है और दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुरुष हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है और इनके रूप में भगवान विष्णु ने ही अपना संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनके दूर ही रहते हैं। साधु पुरुषों के रक्षक और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर सती को मन पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ना तो वो भगवान शिव की बड़ी माया बड़ी प्रबल है और ना संपूर्ण त्रिलोकी को मुंह में डाल देने वाली। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है जानकर लीला विषाद प्रभु सनातन शंभु ये बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस पर्वत के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो वो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बन के श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वो मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आया देव शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार कर बोले। राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान श्री शंभु कहाँ हैं? आपके पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताएं। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर उस समय सती आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव की कही हुई बात का स्मरण करी और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने स्वरूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणों विंद का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा आपके पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता जी को खोजने में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा केश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए थे। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है, तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदने कैसे हो। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती के वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमलों से समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु श्री भगवान शिव का स्मरण किया और उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुन्ने, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। तब मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। तो इस तरह से भगवान शिव का एक प्रसंग खत्म होता है, जिसमें माता सती ने भगवान शिव के आज्ञा से श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठ भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम से में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब और इंद्र आदि देवगण, सिद्धों, गंधर्वों, नादिकों आदि संपूर्ण उपदेशों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमनों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनि को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को नाना प्रकार की वस्तुएं संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों, नागों, 16 16 कन्याओं को भी बुलाया। जिनके हाथों में मंगली वस्तुएं थी, मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वागों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों से जलों को भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उत्सवर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनके मंगल कौतूहल कराए गए। इस सब को जानने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया, जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल श्री शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परश्वता के सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ही विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं तात। तुम संपूर्ण देवता आदि को
साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर रंसेचिंत हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदांतर ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं को समक्ष श्री हरि के बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, अरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता पालक संहारक हो। धर्म अर्थ काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज जगदीश्वर बने रहो। सम्मांगल में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होंगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई तीन प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी लोकों में नित्य स्वतंत्र हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चित ही मेरे द्वारा रत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवताओं आदि के लिए भी कठिन है तथा जिस मोहित होने पर ये विश्व जग रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वहां रुद्र तुम्हारा ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वो गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारा अवतार होगा वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वो मेरे वर से सदा प्रसन्न ही रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना खंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा बल्लभ भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान श्री लक्ष्मीपति कहां गोपेश्व धारण करके आए और गोपी तथा गोप तथा गोपियों तथा गौ के साथ अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय ही वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चार भाइयों के रूप में अवतरण हुए हैं। उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरह होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिय का अन्वेषण कर रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल ही होगा। मां सती, आपकी कृपा से ऐसा होने पर कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आप ओर से मुझे सती की प्रतिविषायक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सती को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों की दयालु हो जाए वो पुरुष धन्य और श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव ने और जो श्री राम जी ने उन्होंने श्री माता सती को वो बताया है कि किस प्रकार भगवान शिव की प्रार्थना होती है, कृष्ण भगवान शिव श्री विष्णु के भक्त हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्मों को याद करके उनमें मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंगकाते फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव के पास लौटे। मार्ग में जाते हुए देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक में व्याकुल और निस्सेज हो गए। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा। प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनके बात सुनकर मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद से डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहेली की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोले, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारा जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वे आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी बताएं। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उन्हें नहीं बताया। उन्हें इस समय सती ने अपने प्राण बल्लभ पति भगवान शिव के वियोग को मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। ये दोनों सदा अपनी इच्छाओं से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव शिव का ध्यान करके सती उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों से निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुनि शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल प्रतीत हो गए। तत्पश्चात उत्तम लीला करके महादेव ने ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों को प्रणाम किया। उदार चेत शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती को शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्व सुखी हो गई। फिर भी उन्होंने शिव ने अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसा संपन्न है और कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना संभव है। उनकी इच्छा से उनमें लीला वियोग हो सकता है। तो गाइस अब जो कल का टॉपिक है वो ये है कि प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्ण श्राप देना और नंदी द्वारा ब्रह्मांड कुल की शाप प्रदान भगवान शिव नक का नंदी को शांत करना। तो कल हम इस टॉपिक पे शिव पुराण में आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। और आप जो भी शिव पुराण सुनने पसंद करते हैं वो आए, और सारस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिव पुराण सुना। अगर आपको सुनना है तो इसके ऑलरेडी एपिसोड अपलोड हैं, तो आप जाके सुन सकते हैं। ये वाला एपिसोड भी अपलोड हुआ। आप सभी का शिव पुराण में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम कल बात करेंगे वो मैं आपको बता दिया है, आज ही टॉपिक बता दिया है, तो कल हम उस चीज पर चर्चा करेंगे। आपकी रात्रि शुभ हो। हर हर महादेव।